गायाम्
दातुं सकृष्ण गंगायाम्
पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः
पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः अथा इसके बाद ते वे सुप्रसिद्ध पांडव गण संपरेतानाम कुरुक्षेत्र के युद्ध में निहत स्वानाम अपने स्वजनों को उदक मिच्छताम जो जल की कामना करते हैं दातुम देने के लिए तर्पण करने के लिए सकृष्णा भगवान कृष्ण के साथ गंगायाम गंगा के तट पर ययुः गए पुरस्कृत्य आगे रखकर स्त्रियः स्त्रियों को। तो कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार अर्जुन ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया। अब श्रील सुद गोस्वामी कथा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के अनेक संबंधी मारे गए थे, तो उन संबंधियों को जल देने के लिए वे सब भगवान कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी के तट पर जब वे जा रहे थे तो स्त्रियों को आगे करके चल रहे थे, यही विधान है। उस यात्रा में जब अपने स्वजनों को जल देने के लिए तिल और जल अर्पण करने जाते हैं, जिसको तिलांजलि कहते हैं, तो उसमें विधान है कि स्त्रियों को आगे करके चलना चाहिए। तो पुरस्कृत ययुः स्त्रियः, स्त्रियः पुरस्कृत्य ययुः, स्त्रियों को आगे करके गए। तो इस प्रकार यही विधि है। हमारे वैदिक संस्कृति में यह बात बहुत प्रचलित है और बिल्कुल साइंटिफिक बात है कि हमारे स्वजन जब शरीर छोड़ते हैं तब ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न कोई व्यक्ति हमको जल देगा। तो उदकम इच्छताम यहाँ लिखा गया, इच्छा करते हैं जल की। यहाँ जब कोई व्यक्ति अपने स्वजन को जल देता है तो वह जल परलोक में उसको मधु दही या अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार आदि के रूप में परिणत होकर के मिलता है। देखने में लगता है कि हम जल दे रहे हैं, लेकिन वो जल ही मात्र नहीं मिलता है, उससे मृतात्मा के जो शरीर छोड़ चुका है उसकी आकांक्षा रहती है कि हमारे परिवार में जन्म लेने वाला हमको दे। तो यहाँ भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि यदि जल दिया जाता है तो उसको वह जल अनेक सुखमय वस्तुओं के रूप में उपलब्ध होता है लोक में, परलोक में। इसलिए जल देने की परंपरा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई किसी को केवल एक चेक दे, तो चेक तो देखने में बिल्कुल सिंपल कागज जैसा दिखता है, लेकिन उस चेक पर पैसा रहता है और उस चेक से वो चाहे व्यक्ति तो बहुत सी वस्तुएं खरीद सकता है। देखने में लगता है कि यह एक साधारण कागज है, लेकिन उसके भीतर जीवन की बहुत सी सुविधाओं को खरीदने की शक्ति होती है। तो इसी प्रकार देखने में लगता है कि यह केवल जल है, लेकिन वह जल मात्र ही नहीं होता है। तो उदकम इच्छताम शब्द लिखा गया, जो जल की इच्छा करते हैं। तो पांडवों के परिवार के लोग और अनेक संबंधी भी मारे गए थे इस युद्ध में, प्राय सभी संबंधी थे, तो उनको जल देने के लिए वे गंगा जी के तट पर गए। जब जल देने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, सकृष्णा श्री कृष्णेन सहिता, श्री कृष्ण जा रहे थे। अद्भुत बात है कि पांडव भगवान के संबंधी हैं, खास पांडु महाराज भगवान के फूफा थे और कुंती फूई थी, तो यह भी संबंध था। वसुदेव जी की खास बहन थी कुंती, और वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण हैं और कुंती के पुत्र अर्जुन आदि युधिष्ठिर आदि हैं, तो बहुत निकट का संबंध था। और सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। बलराम जी की माँ हस्तिनापुर की थी रोहिणी, तो इस प्रकार के कई संबंध आपस में बंधे हुए थे। तो भगवान कृष्ण भी स्वजनों के स्नेह से बंध कर इन सब क्रियाओं में भाग ले रहे थे, तो वे भी जल देने के लिए गंगा जी के तट पर गए। यह बहुत आवश्यक क्रिया है जिसे करना चाहिए। तर्क करने वाले तो अनेक प्रकार के तर्क करते हैं, जैसे बहुत से नास्तिक हैं जो कहते हैं कि यहाँ हम जल देंगे तो स्वजनों को कैसे मिल जाएगा, वो कहाँ है, क्या एड्रेस है, कहाँ गए हैं, इसका कोई पता ही नहीं होता है, कैसे मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई व्यक्ति जब घर से निकलता है किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो रास्ते में खाने के लिए उसको लेने की क्या आवश्यकता है। कहीं गया है और यहीं से मंत्र पढ़ करके कुछ दे दिया जाता है ट्रेन में या प्लेन में, वो कहीं भी मिल जाएगा उसको भोजन, वो लोग तर्क देते हैं अगर ऐसी व्यवस्था होती तो। लेकिन उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि भगवान की कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है और कौन सी वस्तु कब कहाँ किसको मिलेगी। यह वास्तव में दुर्गेय है। जब शास्त्र कहता है कि ये वस्तुएँ परलोक में स्वजन को प्राप्त होती हैं, तो उसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जो केवल लिखने से मान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजली का वायर है, तार है, और कहीं लिखा हुआ है डेंजर, तो कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि हम नहीं मानते हैं कि इसको छूने में कोई डेंजर है, हम छू कर देखेंगे। तो छू कर देखने में तो बाद में रिपोर्ट भी नहीं दे पाएगा कि कैसा था, है ना। लिखा हुआ है डेंजर तो हम मान लेते हैं, ठीक है डेंजर है। शास्त्र कहता है कि अपने स्वजनों को जल देना चाहिए तो देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो भगवान कृष्ण के साथ पांडव लोग गए वहाँ, जा करके गंगा जी में स्नान किए। गंगा में स्नान करके वे अपने स्वजनों को तिलोदक देने लगे, तो उस समय जितने भी अपने निकटतम स्वजन मरे थे उनके नाम बोले जा रहे थे। जब नाम बोले जा रहे थे तो उनके गुणों का स्मरण हो रहा था। नाम रखते ही वे कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, मिलते थे, सब बातें याद आती थी। इसीलिए लोग बहुत विलाप कर रहे थे, विलप्य च भृशम पुनः ते निनीयोदकम सर्वे, वे जल दे रहे थे लेकिन विलप्य च भृशम, भृशम अत्यधिकम विलप्य, बहुत अधिक विलाप कर रहे, रोने लगे, खास करके स्त्रियां रोने लगी बहुत जोर जोर से, और रो करके विलाप करके फिर गंगा जी में पुनः स्नान किए। तो गंगा जी की विशेषता बताते हैं, हरि पादाब जरजह पुत सरी जले, गंगा जी का जल भगवान के चरण कमलों के रज से परम महिमा में हो गया है। वास्तव में गंगा जी की धारा तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आती है, परंतु भगवान के चरण कमलों का जो संस्पर्श है, धोया गया है, इस कारण से गंगा जी की महिमा कोटि गुना अधिक बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को जब वो इंडिया जाते हैं इधर से, तो अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी आज भी हैं। तो पांडव लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, बहुत बहुत विलाप वर्णन किया गया है। स्नान करने के बाद, तिलोदक देने के बाद फिर तट पर बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज सर्वोपरि थे, तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधव सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधु सुचारपिता। तो वहाँ पर सब लोग रो रहे थे, माधव समझा रहे थे, श्री कृष्ण समझा रहे थे, सबको सांत्वना दे रहे थे। किसके साथ? मुनियों के साथ। कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास देव और धौम आदि मुनि थे, वे लोग समझा रहे थे इनको, सांत्वना दे रहे थे कि रोइए मत, शोक मत कीजिए, बहुत प्रकार की बातें कहकर। क्या क्या बातें वे कहते थे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कौन कौन मुख्य लोग थे जो बहुत अधिक शोक में डूबे थे, तो सहानुजह कुरुपति, कुरुपति यहाँ कहा गया है महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ शोक में डूबे हुए थे, सब रो रहे थे, और धृतराष्ट्र महाराज रो रहे थे। इसके साथ ही साथ गंधारी, प्रिथा और कृष्णा द्रौपदी, गंधारी के 100 पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में। बेचारी वह बहुत बिलख रही थी, रो रही थी। और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे जिसकी कथा कल कही गई थी, और कुंती का पुत्र भी मारा गया था कर्ण। तो यद्यपि कुंती इस रहस्य को सबसे नहीं बताई थी, परंतु वह बेचारी जानती थी कि उसका पुत्र मारा गया है, इस कारण से वह भी बहुत दुखी थी। यद्यपि उसके पुत्र विजयी हुए थे, लेकिन वो तो जानती थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र मारा गया है। जब कुंती कुमारी अवस्था में थी, उसी समय भगवान सूर्य के द्वारा उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे लोक लज्जा से कुंती ने एक मंजूषा में, एक पेटी में बहाया था, लिख करके चिट्ठी कि किसी भी व्यक्ति को यह बच्चा मिले तो इसका पालन पोषण करना। उसके बाद भी कुंती एक परम शुद्ध सती स्त्री मानी जाती है। ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं, लोक दृष्टि से लोग नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत ऊंची बातें। कुंती सब तरह से शुद्ध थी। उसने प्रयास भी किया था कर्ण से, जब युद्ध निश्चित हो गया कौरवों पांडवों का, तो एक दिन कुंती पहुंची थी कर्ण के पास, और उसने बताया कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम युधिष्ठिर के भाई हो, तुम दुर्योधन का साथ मत दो। तो सारा रहस्य कुंती ने खोल करके रख दिया। वो जानती थी कि यही समय है जब अपने पुत्र को विपक्ष से रोकना चाहिए, और यहाँ तक कह दिया कि तुम अगर युधिष्ठिर के साथ आ जाओगे तो दुर्योधन फिर युद्ध नहीं करेगा, उसका मनोबल कम हो जाएगा, और तुम राजा बनोगे, युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेगा, भीमसेन अर्जुन सब तुम्हारे सेवक होंगे। बेटा मैंने लोकलाज से तुमको बहाई थी गंगा में, तो तुम लौट आओ, तुम मेरे पुत्र हो। लज्जा त्याग कर माता कुंती ने कर्ण से यह विनय किया, ये महाभारत में कथा है। लेकिन कर्ण कहा कि माँ तुम हमसे बहुत देर करके यह बात कह रही हो, मैं यह शरीर दुर्योधन को दे चुका हूँ, मैं अब अपने वचन को लौटा नहीं सकता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि इस युद्ध में मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है, अर्जुन निश्चित जीतेंगे, लेकिन मैं किसी भी दशा में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिस मुख से कह चुका हूँ कि मित्र मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तो मैं अब राज्य के लोभ से और युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनने के लोभ से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। फिर उसने प्रणाम किया, कुंती को आश्वासन दिया, फिर भी आपके 5 पुत्र बने रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस बात को महारानी कुंती ने फिर बाद में जब भगवान संधि दूत बनकर जा रहे थे, तो भगवान से भी कह दिया कुंती ने। अब भगवान से न कहे तो किससे कहे? उसने कहा कि कर्ण मेरा पुत्र है, इस तरह से उत्पन्न हुआ था, आप उसको समझाइए। तो भगवान जब संधि दूत बनकर गए, दुर्योधन नहीं माना, तो भगवान कर्ण का हाथ पकड़े धीरे से और कहे कि चलो जरा बात करनी है। सभा से बाहर ले गए रथ पर, अपने रथ पर, और बातचीत करने लगे कि जानते हैं आप किसके पुत्र हैं, कौन आपका पिता है, कौन आपकी माँ है। तो कर्ण को पता था, तो कहा कि हाँ माधव, मुझे पता है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। भगवान तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि जब आप कुंती के पुत्र हैं तो क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, आपको कुंती के साथ रहना चाहिए, युधिष्ठिर के साथ रहना चाहिए। आप जब उस पक्ष में हो जाएंगे तो महाराज युधिष्ठिर आपको चंवर डुलाएंगे, भीमसेन पंखा झलेंगे, द्रौपदी आपको पान खिलाएगी और इस तरह से आपका स्वागत होगा, आप अपने परिवार में आ जाइए, क्यों इस पापी के साथ हैं। तो उस समय भी कर्ण ने कहा कि नहीं, अब मैं यह जीवन हार चुका हूँ, मैं असत्य नहीं बोल सकता, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। और उस समय भी कर्ण यह कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन जीतेगा, हमें मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, मैं युधिष्ठिर के साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कुंती ने प्रयास किया था, लेकिन जिस दिन कर्ण मारा गया और उसके बाद जिस दिन जल दे रहे थे लोग, तो सब लोगों ने देखा कि कुंती धीरे धीरे गंगा जी के बीच में, जहाँ थोड़ा पानी था, वो युधिष्ठिर महाराज के पास जा रही थी कुंती, और कुंती जा करके युधिष्ठिर से कही कि पुत्र तुम कर्ण को भी जल दो। तो युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, कर्ण मेरा क्या लगता है, कर्ण तो मेरा कोई संबंध ही नहीं था, मैं उसको क्यों जल दूं। तो धीरे से माता कुंती ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था और इस तरह से मैंने उसको जन्म दिया था। इतना कह करके कुंती जल में बेहोश होकर के गिर गई। किसी स्त्री के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है, आभूषण क्या उसका जीवन है वास्तव में। जब अपने पुत्र के पास कुंती ने यह बात कही तो वो बिल्कुल मूर्छित हो गई, एक तो शोक हो रहा था, दूसरे लज्जा चली गई। कुंती ने सोचा कि जैसे भी हो अपने पुत्र के का परलोक में हित करना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, माँ का हृदय था, माना नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज से कहने लगी और कह करके बेहोश हो गई, उसके दांत लग गए। तो महाराज युधिष्ठिर गोद में उठाए अपने माँ को और जल का छींटा दिए, हवा दिए, इसके बाद उसकी मूर्छा भंग हुई कुंती की।